ऑफिस पहुंचे हुए विश्वनाथ को लगभग 2 घंटे हो चुके थे। कमरे में हमेशा की तरह काम का वही व्यवस्थित माहौल था। मेज पर कई जरूरी फाइलें खुली पड़ी थीं। लैपटॉप की स्क्रीन पर लगातार नए ईमेल आ रहे थे। सामने कुर्सी पर आर्यन बैठा किसी बड़ी डील के कागज समझाते हुए एक एक बिंदु पर विस्तार से बात कर रहा था। अगर हम इस क्लॉज में थोड़ा बदलाव कर दें तो कंपनी का रिस्क भी कम रहेगा और सामने वाली पार्टी भी आसानी से मान जाएगी, आर्यन पूरे आत्मविश्वास से बोलता जा रहा था। उसके हाथ में पेन था। वो कभी फाइल पर निशान लगाता, कभी किसी दस्तावेज की ओर इशारा करता। लेकिन विश्वनाथ की आंखें फाइल पर थीं, मन कहीं और। उसकी उंगलियां टेबल पर रखे पेन को बिना सोचे समझे धीरे धीरे घुमा रही थीं। चेहरा शांत था, मगर आंखों में हल्की बेचैनी साफ छलक रही थी। सुबह घर से निकलते समय शामली का तपता हुआ माथा अभी भी उसकी हथेलियों में महसूस हो रहा था। वो दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता। कमजोर सी मुस्कान, बुखार से लाल चेहरा और जाते समय उसका धीमे से कहना, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। विश्वनाथ के होंठ अनायास भींच गए। वो जानता था, वो मैं ठीक हूँ सिर्फ उसे निश्चिंत करने के लिए कहा गया था। असल में शामली बिल्कुल ठीक नहीं थी। पापा, आर्यन की आवाज़ सुनकर वो वर्तमान में लौटा। हाँ, मैं पूछ रहा था कि इस अग्रीमेंट पर आपकी क्या राय है। विश्वनाथ ने फाइल की ओर देखा, कुछ सेकंड तक पन्नों को देखता रहा, फिर शांत स्वर में बोला, ठीक है। आर्यन ने सिर हिलाया और आगे समझाने लगा। विश्वनाथ सुन तो रहा था पर वास्तव में कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। उसकी नज़र धीरे धीरे टेबल पर रखे मोबाइल की ओर चली गई। कुछ पल उसने खुद को रोका, फिर जैसे मन ने हार मान ली, उसने बहुत स्वाभाविक ढंग से मोबाइल अपनी ओर खिसका लिया। बिना सोचे उसका हाथ थोड़ा सा टेबल के नीचे चला गया। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि ऐसा क्यों किया। शायद इसलिए कि सामने बैठा आर्यन उसकी बेचैनी पढ़ ना ले। उसने जल्दी से शामली का नंबर मिलाया। फ़ोन बजने लगा। 1, 2, 3, पूरी घंटी बजकर कट गई। कॉल रिसीव नहीं हुई। विश्वनाथ की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसने गहरी सांस छोड़ी। शायद सो गई होगी, उसने खुद को समझाया। दवा खाने के बाद नींद आना स्वाभाविक है। उसने मोबाइल वापस रख दिया, लेकिन मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसकी नज़र फिर उसी मोबाइल पर चली गई। उसे खुद पर हल्की सी मुस्कान भी आई। मैं भी ना, लेकिन अगले ही पल उसने फिर नंबर मिला दिया। इस बार भी वही घंटी बजती रही, कोई जवाब नहीं। विश्वनाथ ने अनजाने में कुर्सी की पीठ छोड़ दी और थोड़ा आगे झुक गया। उसकी उंगलियां टेबल पर धीमी लय में थपथपाने लगीं। आंखों में चिंता पहले से कुछ और गहरी हो गई। उसे याद आया, सुबह उसने नौकरों से कितनी बार कहा था, समय पर दवा देना, बुखार बढ़े तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना और मुझे फौरन फ़ोन करना। उसने एक बार फिर खुद को समझाया, सो रही होगी, अगर अभी आराम कर रही है तो फ़ोन ना उठाना ही अच्छा है। उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया। आर्यन अब भी लगातार काम की बातें कर रहा था। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सामने बैठा व्यक्ति आधा भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा। करीब 10 मिनट बाद चर्चा समाप्त हुई। आर्यन ने फाइल बंद की। ठीक है पापा, मैं बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाकर भेज देता हूँ। विश्वनाथ ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। ठीक है। आर्यन अपनी कुर्सी से उठा। उसने फाइलें समेटी, एक हाथ में टैबलेट लिया और आराम से दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते अचानक उसे सुबह का दृश्य याद आ गया। शामली, जिसे उसने जाते समय कमज़ोर हालत में देखा था। वो ठिठक गया। उसने बिना किसी औपचारिकता के जेब से अपना मोबाइल निकाला, चलते चलते ही शामली का नंबर मिला दिया। उधर हवेली में कमरे का माहौल बिल्कुल शांत था। दवा के असर से शामली की आंखें बोझिल थीं, वो आधी नींद में थी। तभी तकिए के पास रखा मोबाइल कंपन करने लगा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, स्क्रीन पर नजर गई। आर्यन, उसने बिना देर किए कॉल उठा ली। उसकी आवाज़ अभी भी हल्की थकी हुई थी। हेलो, उधर से तुरंत चिंतित स्वर आया। शामली, कैसी हो अब? यही शब्द विश्वनाथ के कानों तक भी पहुँच गए, क्योंकि उसी समय आर्यन अभी पूरी तरह केबिन से बाहर नहीं निकला था। दरवाज़ा आधा खुला था। विश्वनाथ ने सहज ही सिर उठा लिया। उसकी नज़र अनायास आर्यन की ओर चली गई। आर्यन पूरी तन्मयता से फ़ोन पर था। बुखार कम हुआ? डॉक्टर फिर आए क्या? दवा समय पर ली ना? उसके स्वर में एक सच्ची चिंता थी। विश्वनाथ कुछ क्षण बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य उतर आया। उधर शामली ने धीमे से उत्तर दिया, हाँ, दवा ले ली है, अब पहले से थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। अच्छा है, आर्यन ने राहत की सांस ली। आराम करना, ज़्यादा बात मत करना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। शामली मुस्कुराई, ठीक है, और तुम काम पर ध्यान दो, मेरी चिंता मत करो। आर्यन हल्का सा हंस पड़ा। ये बात तुम भी तो किसी की नहीं मानती, खुद बीमार हो और दूसरों की फिक्र कर रही हो। चलो जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक है। कॉल समाप्त हो गई। आर्यन ने मोबाइल जेब में रखा और बिना पीछे देखे केबिन से बाहर चला गया। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बातचीत का एक हिस्सा विश्वनाथ सुन चुका है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। विश्वनाथ की नज़र कुछ पल दरवाजे पर ही टिकी रही, फिर धीरे धीरे उसकी निगाह टेबल पर रखे अपने मोबाइल पर आकर ठहर गई। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई नाराज़गी भी नहीं, बस एक गहरा अनकहा सा प्रश्न। उसने मोबाइल उठाया, कॉल हिस्ट्री खोली, ऊपर लगातार 2 मिस्ड कॉल, दोनों उसी के। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर कुछ पल ठहर गईं। मन में एक ही बात बार बार घूमने लगी, मेरे दोनों फोन नहीं उठाए, लेकिन आर्यन का फोन पहली घंटी में ही उठा लिया। उसने भौहें हल्की सी कुड़ ली, चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देने लगी। ऐसा क्यों? क्या उस समय सचमुच सो रही थी? अगर सो रही थी तो फिर आर्यन का फोन कैसे उठा लिया? उसने कुर्सी की पीठ से सिर टिका दिया, कुछ क्षण तक छत को देखता रहा, फिर खुद ही अपने मन को समझाने लगा। शायद मेरे फोन के समय गहरी नींद में रही होगी और बाद में मोबाइल की आवाज़ से उठ गई होगी। लेकिन पता नहीं क्यों मन इस तर्क को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसकी उंगलियां अनजाने में मोबाइल के किनारे पर धीरे धीरे चलने लगी। चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी बेचैनी के साथ अनकहा सा सवाल उतर आया। विश्वनाथ ने गहरी सांस ली, मोबाइल को फिर से टेबल पर रख दिया। उसकी निगाहें सामने थीं, लेकिन मन अब पूरी तरह एक ही प्रश्न में उलझ चुका था। आखिर मेरा फोन क्यों नहीं उठाया?